राजयोग के इस दूसरे सत्र में राजयोग का मुख्य आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। कल हम सभी ने आत्मा की यथार्थता के बारे में सुना कि आत्मा की वास्तविकता क्या है, और उस वास्तविकता को जब समझ लेते हैं तो कैसे हम आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जो आत्मा को आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, उन आवश्यकताओं को भी हम पूरा कर सकते हैं, और पूरा करने के लिए अपने मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का हमें प्रयोग करना है। योग माना ही जोड़, संबंध या मिलन, जहां आत्मा और पिता परमात्मा का संबंध जुड़ता है, एक मिलन होता है, और जो एक सर्वश्रेष्ठ मिलन है कि जिस मिलन के अंदर कोई दैहिक भान नहीं है, स्वयं को आत्मनिश्चय करके फिर उस पिता परमात्मा से मिलन मनाते हैं। क्योंकि संसार में भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति को जिस बात की स्मृति रहती है, उसी की ही याद उसको सहज और स्वाभाविक आती है। एक व्यक्ति को जब ये स्मृति रहती है कि मैं पिता हूँ, तो उसको अपने बच्चे की याद आती है। एक व्यक्ति को जब ये स्मृति है कि मैं पति हूँ, तो उसको अपने पत्नी की याद आती है। जब उसको ये स्मृति रहती कि मैं बच्चा हूँ, तो उसको अपने माता पिता की याद आती है। तो जो इंसान को स्मृति रहती है, उसी की याद उसको सहज और स्वाभाविक आती है। इसी प्रकार स्वयं को जब आत्मनिश्चय करते हैं, आत्मिक स्मृति में स्थित करते हैं कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो सहज और स्वाभाविक उसको परमात्मा की ही याद आएगी। और उसके लिए जो हमने कल देखा, आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तब उसको जीवन कहते हैं। तो जीवन माना भी एक योग शरीर और आत्मा का, और उसमें शरीर की वास्तविकता तो पांच तत्व है, लेकिन आत्मा की वास्तविकता सात गुण है। जो सात गुण जीवन जीने के लिए हर आत्मा को बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक तो बात ठीक होती है, परंतु जब परमात्मा का विषय आता है तो अनेक प्रकार के मतमतांतर हो जाते हैं। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने में कोई मतभेद नहीं है, परंतु जहाँ परमात्मा का विषय आया वहाँ इतने मत मतांतर हो जाते हैं कि इंसान कभी कभी मूंझ जाता है कि आखिर भी सत्य क्या है। एक बार हमने एक कार्टून देखा था कि जिसमें दिखाया था कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में परमात्मा के लिए कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा है, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था वो कण कण में व्यापक है कहां नहीं, पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब ईश्वर के रूप है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच ईश्वर है तो सबूत दो। अब सोचने की बात है कि इससे भी अधिक मतें होगी दुनिया के अंदर, लेकिन मुख्यतः जब ये मतें हैं तो जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सारी मतों को पढ़ने के बाद उसने ईश्वर के बारे में क्या निर्णय लिया होगा कि सत्य किसको कहा जाता है, किसको कहे सत्य, क्या आत्मा को सत्य कहे, क्या प्रकृति को सत्य कहे, किसको हम सत्य कहे, किसको परमेश्वर कहे, क्या ये सभी परमात्मा है, क्योंकि सारी मतें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो क्या ये सारी मतें ईश्वर है, क्या इसमें से एक सत्य है, ये सत्य कुछ और है जिसको वो जान ही नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी, वहां एक बहन आकर के मुझे कहने लगी कि मेरा बेटा 12-15 साल का होगा, वो मुझे कहता है कि ये हिंदुओं में इतने भगवान क्यों हैं और क्रिश्चियनों में एक गॉड क्यों है। क्या उस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं? वो मुझे पूछता है कि अगर हिंदुओं में इतने भगवान हैं, तो इन सबका हेड कौन है? और फिर वो कहता है कि मैं मंदिर में जब जाता हूँ तो इतने सारे भगवानों को देख करके कंफ्यूज हो जाता कि मैं कहाँ अपने मन को एकाग्र करूँ, इसलिए मैं चर्च में जाना पसंद करूंगा क्योंकि वहां एक ही गॉड है तो मैं अपने मन को एकाग्र कर सकता, बजाय मैं हिंदुओं के मंदिर में जाऊं। वो माँ इतनी दुखी हो रही थी कि हम अपने बच्चे को संस्कार कैसे दे, वो चर्च में जाना चाहता है मंदिर में नहीं जाना चाहता है, कहता मैं कंफ्यूज हो जाता, उसको मैं क्या समझाऊं कि परमात्मा कौन है, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता है तो मैं अपने बच्चे को क्या संस्कार दे सकती हूं। कल को कहीं आपका बच्चा आपको ये प्रश्न न कर दे कि इतने सारे भगवान में से हेड कौन है, कहां हम अपने मन को एकाग्र करें, और अगर आप भी न बता सको तो कल को कहीं वो चर्च में या मस्जिद में जाना पसंद न करे। कहने का भावार्थ ये है मेरा कि ईश्वर एक है, लेकिन सत्य को समझना अति आवश्यक है। और इसलिए अगर आप अपने बच्चे को संतुष्ट न कर सके, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों के अंदर भी ये जिज्ञासा बहुत तीव्र हो जाती है सत्य को समझने की, तो इसलिए वो सत्य क्या है। जैसे वो कहानी एक सुनाते हैं कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, हाथी घर में गए, एक ने पैर पकड़ा तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक ने पीठ पकड़ी तो कहा हाथी दीवार जैसा है, एक ने पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी रस्सी जैसा है, एक ने सुंड पकड़ी तो कहा हाथी सांप जैसा है, और एक ने कान पकड़े तो कहा हाथी सूप जैसा है। आखिर हाथी कैसा है, क्या ये सभी सत्य है, क्या इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं सकते थे। किसको सत्य मानते, तो इसलिए आज के दुनिया के अंदर जब इंसान ईश्वर को ढूंढ रहा है और वो सत्य को समझने का प्रयत्न कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्य को जितना ही समझने की कोशिश करता है उतना ही सत्य से दूर होता जा रहा है, ईश्वर से दूर होता जा रहा है, और दिन प्रतिदिन नास्तिकवाद इस संसार में बढ़ रहा है। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने कोई और बात बताई उसको हमें स्वीकार कर लेना है, नहीं, हम कोई और बात नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे। जैसे एक जवेरी होता है, उसके पास एक कसौटी रहती है जिस पर कस कर वो देखता है कि सोना कितना कैरेट का है, उसी अनुसार उसकी कीमत का निर्णय देता है। ठीक इसी प्रकार सत्य किसको कहा जाए, उसकी भी परखने की कोई कसौटी तो होगी जिस पर हम अपने मत को भी कसकर देखें सत्य किसको कहा जाता है। तो आज वो कसौटी हम आपको देंगे जिससे सत्य को समझना है, और वो कसौटी है 5 बातें। सबसे पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे परमात्मा। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, परमेश्वर एक है। और इसलिए जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे परमात्मा। दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई न हो, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है उसको कहेंगे परमात्मा। तीसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, अर्थात कि हम मनुष्य आत्माएं इस संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, परंतु परमात्मा इन सभी चक्र से परे है, ऊपर है, उसको कहेंगे परमात्मा। जिसके लिए उसने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहा मैं अजन्मा हूँ, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता, काल मुझे नहीं खा सकता है, मैं कालों का काल, मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त देह धारण नहीं करता, मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ। इस तरह की बातें स्वयं भगवान वाच गीता के अंदर आती है। चौथी बात परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सब कुछ जानता हो, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, और जो संसार के तीन महत्वपूर्ण कार्य है, स्थापना पालना महाविनाश का, उसका भी खुद करण करावन हार है। और पांचवा परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्व शक्तिमान है, जिसके लिए ही माँ शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ और धरती का कागज बनाओ और स्वयं माँ सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है। ये पांच बातें जिसके साथ लगे उसको कहेंगे परमात्मा। अब अगर देखें ये पांचों बातें किसके साथ लगती है, क्या जिसको हमने स्वीकार किया है उसके साथ ये पांचों बातें लगती है? सबसे पहले जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? वो किसी कवि ने बहुत सुंदर वो गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा है, वो चित्रकार कौन है? तो वो सत्य किसको कहे? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? रचना है कहना सत्य। अगर रचना है कहना सत्य है तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान है, अज्ञानता के कारण हमने कह दिया। सत्य ये है प्रकृति परमेश्वर की रचना है। दूसरा जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर भगवान के मंदिर में जाकर हम ये क्यों कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम परमात्मा के बच्चे हैं, संतान हैं? क्या कहेंगे? हम ही परमात्मा है या जब उसको माता पिता और हमें बच्चे कहा तो हम परमात्मा की संतान है, क्योंकि दोनों चीज तो एक साथ नहीं हो सकती। या तो हम ही परमात्मा होंगे या हम परमात्मा के बच्चे हैं। आपका विवेक क्या कहता है? बच्चे हैं। कई लोग क्या समझते कि नहीं, जीवन में हम पुरुषार्थ करेंगे ना तो हम परमात्मा बन जाएंगे। अब परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो हम प्राप्त कर ले। हाँ, मनुष्य संसार के अंदर कुछ भी बन सकता है पुरुषार्थ से, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है। बाप जैसा बन सकता है, बाप जैसा बनकर बाप का कारोबार संभाल सकता है, बाप जैसा बनकर बाप की गद्दी संभाल सकता है, बाप जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। ये नहीं कि वो पिता बन गया, अभी छोटे भाई बहने भी उसको पिता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? कहेंगे कि आप हमारे पिता समान हो, लेकिन आप हमारे पिता नहीं हो।
तो पिता समान और पिता इसमें अंतर है। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, तो कोई भी टाइटल प्राप्त कर सकता है। किसी ने पुण्य का कर्म किया तो उसको पुण्यात्मा कहेंगे, किसी ने कोई महान कर्म किया तो उसको महात्मा कहेंगे, किसी ने कोई धर्म का काम किया तो उसको धर्मात्मा कहेंगे, किसी ने कोई दिव्य कर्म किया तो देवात्मा कहेंगे। तो देवात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा परमात्माएं ये शब्द नहीं सुनते हैं। कई बार कई लोग समझते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गए, ऐसे ही हम भी परमात्मा से निकले हैं, अंत में परमात्मा में समा जाएंगे। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, माना बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। जबकि आत्मा के लिए तो कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सदा शाश्वत है, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता है। तो वो परमात्मा में मिल कैसे जाएंगी? अगर परमात्मा में मिल गई तो उसके अस्तित्व समाप्त हो गया। जो परमात्मा में कभी मिल नहीं सकती है, क्योंकि उसका अस्तित्व सदा है ही है, अजर अमर अविनाशी। अविनाशी माना जिसका विनाश नहीं होता है। तो इसीलिए सत्य किसको कहा जाए? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा परमात्मा की संतान है, ये सत्य है। हम सो हम ही परमात्मा है ये कहना गलत है, अज्ञान है। अज्ञानता के कारण हमने कह दिया। तो सत्य किसको कहेंगे? आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की वंश है कहना सत्य है? अंश कहना सत्य या वंश कहना सत्य? वंश कहना सत्य। टुकड़े नहीं है हम परमात्मा के, आत्मा का अपना अस्तित्व है, कोई टुकड़ा नहीं है, तो अंश नहीं है लेकिन वंश है, उसके हम बच्चे हैं। तीसरा जब कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? कल हमने देखा पांच तत्व की दुनिया से पार एक छठा तत्व है, जिसको कहा जाता ब्रह्म महतत्व। परमात्मा कोई तत्व है क्या, या उस तत्व में निवास करने वाला तत्व है? क्या कहें? एक तरफ तो हम भजनों में गाते हैं, प्रार्थना में गाते हैं, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। अब सत्य किसको कहे? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य है? दोनों एक साथ तो नहीं होगा। तो सत्य किसको कहेंगे? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य? पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य है ना? जैसे एक मकान होता है, मकान और मकान मालिक। मकान मकान मालिक नहीं है, मकान में रहने वाला मकान मालिक है। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं, ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है। जहां परमात्मा भी निवास करते हैं और जहां सभी आत्माएं भी अपने अपने अस्तित्व में निवास करती है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि उल्टा वृक्ष है जिसका बीज ऊपर है और वृक्ष नीचे है, ऊर्ध्वमूल जिसको कहा गया कि जहाँ हर आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है। चौथा, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहाँ नहीं है, ईश्वर सब में है, क्या ईश्वर सचमुच सब में है? कूड़े कचरे सब में ईश्वर है? अगर सब में ईश्वर हो, आज मान लो कि हमें कोई कह देता है कि ये फलाने व्यक्ति तो जानवर जैसा है, तो हमें अपमान फील होगा, हमें जानवर जैसा कह दिया। और ईश्वर को हम कहते हैं, ऊंचे से ऊंची हस्ती को हम कहते हैं कि वो जानवर में भी है, कूड़े कचरे में भी है, सब में है, तो ये क्या परमात्मा का अपमान नहीं है? क्या परमात्मा का रिस्पेक्ट है ये? आज अगर ईश्वर सब में व्यापक होता, हर एक व्यक्ति के अंदर व्यापक है, तो एक व्यक्ति जब दूसरे का खून करता है, दोनों में ईश्वर है, आत्मा भी है और परमात्मा भी बैठा है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है, तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान की इतनी भी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को बुरे कर्म करने से रोक सके? इतनी भी शक्ति नहीं है? क्या वो इतना असमर्थ है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक नहीं सकता? आज घर में अगर बच्चे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हो, माँ बाप सामने बैठे हैं, तो लड़ने देंगे या छुड़ाएंगे? छुड़ाएंगे ना, लड़ने थोड़ी देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर परमात्मा सब में व्यापक हो और मनुष्य इतना गलत कर्म कर रहा है और वो रोक न सके उसको, तो क्या ये सर्वशक्तिमान कहेंगे उसको? जब परमात्मा की महिमा गाते हैं, तो बिना कर्तव्य के उसकी महिमा थोड़ी हो सकती है। जब उसको कहा जाता है दया का सागर, करुणा का सागर, प्रेम का सागर, तो कहाँ गई उसकी दया उस वक्त, उसकी करुणा उस वक्त, जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक न सके? तो क्या ईश्वर सब में व्यापक है? आज हमें कोई अगर कोई कुछ कहता है, बताता है, तो मनुष्य भी कहने में स्वाभाविक रीति से क्या कह देता है, अरे ऊपर वाला जाने, तुम छोड़ो ना, क्यों चिंता करते हो, कहते हैं ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, या सब में जो बैठा हुआ है वो जाने? कभी कहा ऊपर वाला जाने? गलती से भी हम यही कह देते हैं ऊपर वाला जाने, तो वो ऊपर कहाँ है? इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में भी उन्होंने ये वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने अर्थ में आता। ये वायदा है ईश्वर का। अगर ईश्वर अधर्म के समय आता है, तो कहाँ से आता है? अगर वो यही व्यापक है, सब में ईश्वर है, तो फिर तो ये गीता के महावाक्य झूठे हो जाए कि अधर्म के समय पर मैं आऊंगा। अगर वो सब में व्यापक है, तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? हो ही नहीं सकता। इसकी अनेक बातें हैं। आज प्रकृति के अंदर भी एक गुण है कि अपने गुणों को ट्रांसफर कर सकता है। अग्नि के अंदर लोहा रख दो, तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा कि लोहा भी एकदम लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। परमात्मा जो गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो और सब में अगर व्यापक हो, तो क्या उसका कोई गुणों का संग का रंग हमें नहीं लगा? ऐसा हो सकता है क्या? आज मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी भी थोड़े दिन किसी के संग में रहते हैं तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी था, जंगल से दो तोता पकड़ कर ले आया। वो तोते को बेचने बैठा बाजार में, एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिन के बाद देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो राम राम बोल रहा था, आरती गा रहा था, लेकिन जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह ही गालियां बोल रहा था। तो पशु पक्षी भी थोड़े दिन किसी के संग में रहते हैं तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। अगर ईश्वर हम सब में व्यापक हो और वो गुणों में अनंत हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा हो सकता है? तब फिर मनुष्य के मन में ये बात आती है, फिर क्या शास्त्र में ये बात जो लिखी गई है वो झूठ है क्या? झूठ भी नहीं है। अगर झूठ भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि पहले के समय में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो वो अपनी तपस्या की शक्ति से आने वाले कली काल को देख सकते थे कि जब कलयुग आएगा तो घोर पापाचार का युग होगा और उस वक्त मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे। तब उन्होंने बड़ी शुभ भावना के साथ ये बात शास्त्र में लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। ताकि मनुष्य को ये डर रहे कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं पाप नहीं करूंगा, और उसमें मनुष्य की सुरक्षा रहेगी कि बुरे कर्म से वो बचा रहेगा। ये बड़ी शुभ भावना के साथ शास्त्र में ये बात लिखी गई थी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, घुटना करना जब सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाता है और माँ को ध्यान अधिक रखना पड़ता है, कहीं बाहर न चला जाए, रास्ते पर न चला जाए। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता दिखाती है और कहती है बाहर गया ना, वो कुत्ता उठा के ले जाएगा। और ये बात को वो बच्चा सच मान लेता है और घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है। बाहर जैसे कुत्ते को देखा तो क्या करेगा, वापस अंदर आ गया। तो उसी बात को स्वीकार कर लेने से उसकी सुरक्षा रहती। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा वो? हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। और वो हंसता हुआ निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को घर में ले आता है, बोला देखो मैं ले आया हूँ उसको अंदर, क्या कहेंगे उसे? पहले उसी बात को उसने सच मान लिया था, सुरक्षित रहा, और अभी उसी बात पर वो हंसता है। ठीक इसी प्रकार जब तपस्वियों ने ये कहा कि भी आने वाला कली काल को देखते हुए कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो देख रहा है। तो मनुष्य भी पाप नहीं करता था, कोई अगर कहता भी था ना उसको पाप करने लिए तो भी क्या कहता था, अरे बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में मुझे रहना है, इज्जत से जीना है, ये पाप नहीं करूँगा, ईश्वर भी मुझे देख रहा है, ये कहता था। और आज विज्ञान के युग में मनुष्य भी बड़ा हो गया ना, समझदार हो गया, तो आज क्या कहता है, वही डायलॉग है, डायलॉग वही है, शब्द वही है कि बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, अगर पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। पहले वही कहता था, पहले क्या कहता था, अरे बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, ये पाप मैं नहीं करूंगा, ईश्वर भी मुझे देख रहा है। और आज क्या कहता है, बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, भगवान अगर देखता है तो मुझे छुड़ाए ना, देखता क्यों है। यानी वो डर भी नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति बड़ा समझदार बन गया, विज्ञान का युग आ गया ना, हर बात का सबूत मांगता है। इसीलिए कहा ये सर्वव्यापकता की बात भी एक भावनात्मक सत्य थी, और ये भावनात्मक सत्य जिसको अपनाने से मनुष्य सदा पाप कर्म से बचा रहा, सुरक्षित रहा, पाप नहीं करता था। आज भी अगर ये भावना को लेकर के चले तो हम पाप से हमेशा बचे रहेंगे, लेकिन आज ये भावना इंसान के अंदर से खत्म हो गई है, और इसलिए पाप कर्म बढ़ता ही चला गया। कहने का भावार्थ, कली काल का प्रभाव हो करके ही रहा। तो सत्य ये है कि ईश्वर सर्वव्यापकता की बात जो है ये एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं है। पांचवी बात, जब हम कहते हैं कि वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है, अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है, हवा जो दिखाई नहीं देती है, फिर भी एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात तूफान दिखाना हो, बड़ी तेज हवा दिखानी है तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता, चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, चक्रवात तूफान है, और अगर उसको शांत प्रकृति दिखानी है तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता, वो भी दिखा सकता है, चित्र को देखकर कहेंगे जैसे हवा चली नहीं रही, एकदम शांत है, जैसे पत्ता हिल ही नहीं रहा है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज ही नहीं है। तो क्या परमात्मा को स्वयं को कोई नाम रूप आकार नहीं होगा, जरूर होगा, हाँ मनुष्य सदृश उसका स्वरूप नहीं होगा, लेकिन उसका अपना स्वरूप तो होगा, वो कौन सा स्वरूप है, तो जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा, वो भी एक आत्मा है। आत्मा का स्वरूप कैसे है, ज्योति स्वरूप है, इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, आत्मा का स्वरूप एक चैतन्य ज्योति कुंज है, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा, वो भी चैतन्य ज्योति कुंज है, इसीलिए उसकी पूजा के अर्थ भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम बना दिया, कि जिसके ऊपर अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके, और उसको नाम दे दिया सदा शिव, गुणवाचक नाम, सदा कल्याण करने वाला जो है, मनुष्य के नाम जो है गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में होगा टेंशन ही टेंशन, है ना। किसी का नाम होगा अमीर चंद, लेकिन होगा फकीर। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। सदा शिव यानी जो सदा कल्याण करने वाला है। इसलिए भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम विशेष है, जिसकी पूजा आज दिन तक भी होती है और जिसको आज भी बड़े से बड़े तीर्थ स्थान के रूप में गिना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों दिशा में आपको शिव के मंदिर अवश्य मिलेंगे। नॉर्थ में जाएंगे अमरनाथ के रूप में उसका मंदिर आपको मिलेगा, जो अमर आत्माओं का नाथ है। तो साउथ में चले जाओ, श्री रामेश्वर के रूप में उसका मंदिर मिलेगा कि जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी की। ईस्ट में चले जाओ, काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा मिलेगी, और वेस्ट में चले जाओ तो सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा मिलेगी। भारत से बाहर नेपाल चले जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा मिलेगी, और जितने भी उनके मंदिरों के नाम है वो भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है, जिसके नाम की एंडिंग भी या नाथ या ईश्वर में होती है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, सब शिव के मंदिर, या श्री रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सब शिव के मंदिर। जो सर्व का नाथ और ईश्वर है वो एक ही परमात्मा। इतना ही नहीं, देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, परंतु साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा अधिक मिलेगी, विष्णु पूजा। ईस्ट में चले जाओ कलकत्ता तरफ तो काली पूजा, दुर्गा पूजा अधिक मिलेगी। तो वेस्ट में चले जाओ गुजरात महाराष्ट्र में तो गणेश पूजा अधिक मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए उनको कहते ही है देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा स्वयं सभी देवताओं ने भी की। रामेश्वरम में श्री राम ने जिसकी पूजा की, अब अगर श्री राम भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि स्वयं श्री राम भी जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव से। इसलिए स्वयं श्री राम ने भी शिव की पूजा करके वो शक्ति को प्राप्त करके फिर रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया। वो अपनी शक्ति से नहीं कर सकते थे। कि किसी प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, आज भी वहां पर स्थानेश्वर का मंदिर है, जिसके लिए पंडित लोग बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने भी यहाँ शिव की पूजा की थी, पांडवों से भी कराई थी, उसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों की और कराई? क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त करना था। इसीलिए जिन देवियों की हम पूजा करते हैं नवरात्र में, ये देवियां कौन थी? तो कहते हैं कि जब संसार में असुर बढ़ गए तो असुरों का संहार करने के लिए शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया, इसीलिए उनको कहते हैं असुर संहारनी शिव शक्तियां। तो जो देवों का भी देव है, देवियों का भी देव है, वो महादेव है। लेकिन यहाँ भारतवासी एक गलती कर देते, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहाँ दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहाँ दोनों का स्वरूप भी अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहाँ दोनों का कर्तव्य भी अलग है, शिव के लिए कहा सदा कल्याण करने वाला भोलानाथ, जबकि शंकर के लिए कहते हैं तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। जहाँ नाम अलग है, स्वरूप अलग है, कर्तव्य अलग है, तो एक कैसे हो सकते हैं? अगर शंकर ही महादेव थे तो फिर कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने किसकी तपस्या की थी? कैलाश पर्वत जिसको कहते हैं दुनिया का सर्वोच्च शिवलिंग, उसके सामने बैठ करके अगर शंकर ने भी आराधना की, क्यों किया? क्योंकि शंकर को भी शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए क्योंकि उनको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब आंख खोलते महाविनाश हो सकता है। आज भी आप अमरनाथ चले जाओ, अमरनाथ का महत्व क्यों है? क्योंकि दिखाया जाता है कि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती जी को अमर बनाई, तो शंकर और शिव एक है या अलग है? अलग है, तभी तो कथा सुना सकेंगे, जिसके साक्षी वो दो कबूतर दिखाते। तो इसलिए कहा शिव और शंकर दोनों एक नहीं, अलग है। जहाँ नाम अलग है, स्वरूप अलग है, कर्तव्य अलग है, तो एक कैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो सभी देवों का भी देव एक ही है। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। एक बार एक भिखारी था, रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था, मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देता जरूर था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया कि यह राजा लाता कहां से है, अगर उस स्रोत को मैं भी जान लूं तो मुझे भी भीख मांगनी न पड़े, मैं भी उस स्रोत से ही प्राप्त कर लूं। तो उसने सोचा कि जरूर राजा सुबह सुबह ही स्रोत से प्राप्त करता होगा, फिर सारा दिन बांटता रहता हो। तो एक दिन वो सुबह जल्दी 6 बजे में पहुंच गया देखने के लिए कि राजा लाता कहां से है, उस स्रोत को मैं भी जान लूं। द्वारपाल को जाकर पूछा कि हे द्वारपाल, तुम मुझे ये बताओ कि राजा इस वक्त कहां होगा और क्या करता होगा। द्वारपाल ने कहा राजा वो तो मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो भिखारी ने सोचा जरूर वहां कोई स्रोत होगा, पूछा मैं जा सकता हूँ वहां पर? कहा क्यों नहीं जा सकते हैं, परंतु पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। तब मैं पीछे ही बैठूंगा, मुझे आगे कोई काम भी नहीं है। वो जाकर पीछे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा प्रार्थना करने लगे भगवान से और कहने लगे हे प्रभु, मेरी झोली सदा भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ये बात भिखारी ने सुनी, उठ करके बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात थी? घरे आज पता चाहिए, राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं, हम भी डायरेक्ट भगवान से ना मांगे जो हमारी झोली भी सदा भरतू कर दे। चलते चलते भिखारी का विचार चलने लगा कि राजा जो पूजा कर रहे थे ना, वो हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। इसका मतलब हनुमान जी ने राजा को दिया, राजा ने फिर भिखारी को दिया। लेकिन हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे, तो इसका मतलब श्री राम ने हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने राजा को दिया और राजा ने हमें दिया। फिर सोचने में पड़ गए श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उसने तो महादेव जी की पूजा की थी, अर्थात भोलेनाथ ने, और भक्त भी होंगे तो एक हिस्सा श्री राम को दिया, श्री राम के भी इतने सारे भक्त उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को दिया, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त उसमें से एक हिस्सा राजा को दिया, राजा को भी तो कितने सारे को देना पड़ता, तो एक हिस्सा मेरे पास आया। तो कहा ये वाया वाया में सब कट हो रहा है, तो आज के बाद डायरेक्ट कनेक्शन भोलेनाथ के साथ है ना, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटक गए हैं, तो क्या होगा? अभी डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, है ना। वो जैसे राजा अकबर की और बीरबल की बात याद आती है कि एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये राज्य कोष में इतना कम पैसा क्यों जमा हो रहा? बीरबल तो हाजिर जवाबी था, उसने एक बर्फ का टुकड़ा मंगाया, सारे दरबारियों के हाथ से गुजारा, जब राजा के हाथ में आया तो बहुत छोटा रह गया। कहा राजा जब इतने हाथों से गुजरता है तो कम तो होना ही है ना, तो इसलिए अगर हम भी वाया वाया में ही अटके रहे तो कितना मिलेगा, और डायरेक्ट अगर याद करेंगे तो कितना मिलेगा। तो इसलिए आज के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन करो, भोलेनाथ को प्रसन्न करना जल्दी और सहज है। तो इसीलिए परमात्मा जिसको भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा की और धर्म में देखे, मुसलमान धर्म में जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, परंतु मक्का जब हज यात्रा पर जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है जिसको नाम दिया गया है संगे अस्वद, और इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि पहले के समय में मुसलमान धर्म में भी 186,000 देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा जाता था मक्का में, परंतु एक समय आया जब मुसलमान लोग आपस में बहुत झगड़ा करने लगे परमात्मा के विषय को लेकर के। उस वक्त एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से ये पत्थर गिरा मक्का में कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और तब से लेकर के वो 186,000 देवी देवताओं की जो मूर्ति थी उन्हें नष्ट किया गया और उसी जगह पर ये काबा के पवित्र पत्थर की स्थापना की गई। हर मुसलमान इसीलिए मानते हैं कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब तक उनका जीवन सफल नहीं हुआ। वहां जाने के बाद हर मुसलमान क्या करता है? वहां जाने के बाद हर मुसलमान अपने पापों का प्रायश्चित करता है और अपनी बंदगी में अंत में एक वाक्य कहता है, जो वाक्य के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो वाक्य है हे परवरदिगार, परमेश्वर के लिए कहा गया है, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो, और तब उनका हज कबूल होता है। जब तक ये लाइन नहीं कहेगा तब तक उसका हज कबूल नहीं होता है। हे परवरदिगार ये परमेश्वर के लिए कहा, नूरे इलाही, नूर का मतलब है तेज, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, तो ज्योति का मतलब क्या है? तेज, और नूर का मतलब भी तेज है। हमने जिसको ज्योतिर्लिंगम कहा उन्होंने नूरे इलाही कहा, बात तो एक ही है या अलग अलग है?
एक ही है।
और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता है कि मोसेस जब माउंटेन पर गए थे, मूसा जब पर्वत पर गए थे, वहां उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिस साक्षात्कार से हम 10 कमांडमेंट्स मिले, 10 कमांडमेंट्स मिले, और जिस ज्योति प्रकाश को देखते हुए मोसेस ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। इसीलिए क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, क्राइस्ट ने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, परमात्मा परम प्रकाश है। इसीलिए तो जब उसको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे तब भी उसने अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। ये हे प्रभु किसको कहा? और इसलिए आज भी वेटिकन में चले जाओ, रोम में जहां उनका सबसे बड़ा चर्च है, वहां पर सूर्य के आकाश आकार का परम प्रकाश का प्रतीक है। और इसलिए हर चर्च में जाओ तो वहां पर आपको मोमबत्ती मिलेगी, उसमें भी एक बड़ी मोमबत्ती जलाते हैं, बाकी छोटी छोटी मोमबत्तियां जलाते हैं। बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक है, छोटी मोमबत्ती आत्माओं का प्रतीक है। जिसको क्रिश्चियन लोगों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात तो एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में भगवान की महिमा गाई है, व्याख्या की है, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं किया है। एक ओंकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत, कि एक ओंकार निराकार स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, वही एक सत्य नाम है। इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की पूजा की थी। और आगे जाए तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने किसकी तपस्या की थी? महावीर स्वामी को भी ध्यान अवस्था में दिखाते हैं किसके ऊपर ध्यान लगाया। तो जैनी लोग बताते हैं कि जिस निराकार परमात्मा के ऊपर महावीर स्वामी ने ध्यान लगाया उसका नाम उन्होंने दिया सिद्ध शिलापति, जो सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए हर जैनी दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया है वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? वो शिव कौन है? महात्मा बुद्ध जिन्होंने भी मूर्ति पूजा में कभी कोई आग्रह नहीं किया, लेकिन आज भी जापान चले जाओ 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है जो बिल्कुल निराकार शिवलिंग जैसा होता है, और उसको कहते हैं करने का पवित्र पत्थर, और उसको नाम दिया है चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी यानी जो सदा शांति का दाता है। तो महात्मा बुद्ध ने भी उसको परमात्मा का स्वरूप दिखाया है। और आगे जाओ पारसी धर्म में चले जाओ तो कहा जाता है कि ईरान से भारत जब पारसी लोग आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी जब उनकी नई अज्ञारी स्थापन होती है तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर के वहां स्थापित कर देते हैं, उसको कहते हैं अखंड ज्योत जो निरंतर जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है, वो परम प्रकाश, वो परमेश्वर है। तो जिसको किसी ने अखंड ज्योत कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने ज्योतिर्लिंगम कहा, बात तो एक ही हो गई ना। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? एक परमेश्वर जो प्रकाश है, नूर है, तेजोमय है। तभी तो श्रीमद् भगवत गीता में भी जब भगवान ने अपने परिचय में ये कहा कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, तब तो अर्जुन को संशय पड़ा था। और अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने तो देह धारण किया है, व्यक्त देह है, आपका तो जन्म हुआ, माता के द्वारा आपने जन्म लिया, फिर आप ये वाक्य कैसे बोल सकते हैं? आप मेरा संशय दूर करो, मुझे आपका वास्तविक स्वरूप दिखाओ। तब कहा जाता है कि परमात्मा ने भी हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप दिखाया, जिसका तेज स्वयं अर्जुन भी सह नहीं सका और कहा, बस करो प्रभु, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी हर जगह भगवान वाच लिखा हुआ है कि पर काया प्रवेश करके एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है। और तभी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं अति साधारण स्वरूप में आता हूँ। तो ये महावाक्य किसके है जिसमें परमात्मा ने अपना परिचय स्पष्ट किया है कि मैं कौन हूँ? तो इसीलिए कहा कि सर्वोच्च शक्ति वही परमेश्वर है। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, कि जो स्वयं प्रकट हुआ है उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तो वही सर्वोच्च शक्ति है, सर्वधर्म मान्य है, जिसको सभी धर्म वालों ने स्वीकार किया एक ही स्वरूप में, भले नाम भिन्न भिन्न दिए, किसी ने गौर कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, जो भी कहा, लेकिन है तो वो एक ही, वही सर्वोच्च शक्ति है और वही सभी चक्र से परे है। न जन्म और मृत्यु का चक्र है, न देह और देह के संबंधों का चक्र है, न कर्म और कर्म का फल का चक्र है, न पाप और पुण्य का चक्र है, न सुख और दुख का चक्र है, सभी चक्र से परमात्मा परे है, ऊपर है। इसीलिए उसको कहा सर्वोपरि। लेकिन वही सर्वज्ञ भी है, ज्ञाता है, सब कुछ जानता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसके पास है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है। तीन लकीर यानी जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों का ज्ञान उसके पास, और वह सत्य ज्ञान होने कारण ही उसको सत्यम कहा। उस तीन लकीर के बीच में एक आँख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला वही त्रिकाल त्रिनेत्री भी है। तो त्रिनेत्री जो मनुष्य को भी तीसरा नेत्र ज्ञान का दिव्य चक्षु प्रदान करता है, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी के साथ जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। और ये तीन पत्ते अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता है, जीओडी गौर कहा, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जो ये तीनों महत्वपूर्ण कार्य कराने वाला भी है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम। और जो ये तीनों कर्तव्य भी करण करावन हार कराने वाला है, ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति और त्रिलोकीनाथ। और वही सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। ज्योमेट्री के अंदर दिखाया जाता है कि जब एक पॉइंट लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी की व्याख्या है इन्फिनिट। इन्फिनिट माना अनंत, जिसका मेजरमेंट ही नहीं है। बिंदी के बिना एक लकीर भी नहीं खींच सकते हैं, बिंदी के बिना एक शब्द भी नहीं लिख सकते, पहला बिंदु ही लगाना पड़ता है। तो इसीलिए परमात्मा भी स्वरूप में भले बिंदु है, पर गुणों में अनंत है। विज्ञान के अंदर सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु है, और जितना उस अणु को फ्यूज करते जाते हैं, उतना ही वो अधिक शक्तिशाली बनता जाता है। तो परमात्मा ने भी जब गीता में कहा, हे अर्जुन, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि जितनी चीज सूक्ष्म है उतनी ही वो शक्तिशाली है। तो ये सर्व बातें, पांचों बातें जो कसौटी के रूप में बताई, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान, ये सिर्फ एक परमेश्वर के साथ ही लगती है। इसीलिए वो सभी धर्मों में भी परमात्मा के रूप में ही स्वीकार किया गया है। तो जैसे कल हमने संपूर्ण आत्मा का परिचय देखा, जिसमें पांच बातें बताई गई आपको, आज पिता परमात्मा का संपूर्ण परिचय, या दूसरे शब्द में अगर कहे तो भगवान का बायोडेटा देखा हमने, है ना? बायोडेटा के अंदर पांच बातें आती है, उसका नाम क्या है, स्वरूप क्या है, फोटो चाहिए उसका, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, के जिसमें संपूर्ण परिचय आ जाए। तो आज ईश्वर के परिचय में भी ये पांचों बातों को देखा कि जिसका नाम है सदा शिव, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म, दिव्य ज्योति, प्रकाश स्वरूप, लाइट, नूर, जो भी कहो। उसके क्वालिफिकेशन है सर्व धर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान, ये उसके क्वालिफिकेशन है। उसका निवास स्थान, जिसकी महिमा में हमने गाया, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवन, कि जिसका धाम भी इतना ऊंचा है, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जो परम धाम का निवासी है, ब्रह्म महतत्व का निवासी है, और उनका कर्तव्य क्या है, अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करना, ये है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य, जो उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, मैं अधर्म के समय पर आकर अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना कराने वाला। तो ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य, स्थापना, पालना, विनाश के लिए प्रेरणा देने का कार्य कराने वाला वो परमेश्वर है, खुद कर्ता नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश, तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय, है ना? अब स्पष्ट हो गया कि कल को अगर आपका बेटा पूछे कि ये हिंदू धर्म में इतने भगवान जो है, उन सबका हेड कौन है, हाँ, सदाशिव, तो आप कम से कम उसकी जिज्ञासा को शांत कर सको और उसकी भावनाओं को समझते हुए उसको जवाब दे सको। तो ये परमात्मा का संपूर्ण परिचय है। अब थोड़ी देर के लिए हम सभी बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी देर खड़े हो जाओ और स्वस्थ होकर के फिर बैठो। हाँ बैठ जाइए। परमात्मा चिंतन अभी हम करेंगे, राजयोग का दूसरा कदम। लेकिन जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, ईश्वर से मांगना नहीं है, ये प्रभु शांति दो सुख दो मांगना नहीं है, अनुभव करना है। जैसे अग्नि के पास खड़े होकर अग्नि से कहते नहीं है कि तेरी गर्माइश मुझे दे, या नदी के पास खड़े होकर कि ये नदी से कहते नहीं है कि तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी। ठीक इस प्रकार से परमात्मा से भी मांगना नहीं है कि हे ईश्वर मुझे दे, लेकिन उसके सानिध्य में मन और बुद्धि को ले चलो। मन की रुचि जो है, मन को क्या अच्छा लगता है, मन को क्या अच्छा लगता है, मन को जो है ना घूमना अच्छा लगता है। यहाँ बैठे बैठे भी कितनी बार अपने घर होके आए होंगे, अपने कारोबार में होकर के आए होंगे, तो मन एक जगह पर स्थायी बैठ नहीं सकता है, उसको घूमना अच्छा लगता है। तो मेडिटेशन में भी हम मन को ले चलेंगे घूमने, कहाँ कहाँ ले चलेंगे, परम नाम है ना, परमात्मा के सानिध्य में ले चलो, क्योंकि मन के लिए कोई बंधन नहीं है, मन कहाँ भी जा सकता है ना। समय और स्थान मन के लिए बंधन नहीं बन सकते। कितना समय बीत गई हो कोई बात को, 20 साल बीत गए हो, लेकिन 20 साल पहले की कोई बात को याद करना है कितना टाइम लगता है, एक सेकंड। क्या हुआ था, क्या घटना थी, सब, क्या शब्द कहे गए थे, सब याद आ जाते हैं। ये 5 साल आगे की बातों को सोचना है तो मन 5 साल आगे भी चला जाएगा। यहाँ बैठे बैठे लंदन अमेरिका घूम के आएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो मन के लिए कोई बंधन है ही नहीं, समय और स्थान बंधन नहीं बन सकता है। तो मेडिटेशन में भी हम मन को ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर, जिस यात्रा को कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा। इसीलिए भक्ति में भी यात्रा का विशेष महत्व है कि यात्रा करो, लेकिन वास्तव में है बुद्धि की यात्रा, ये मन की यात्रा है। और इस मन की यात्रा पर जब मन को ले चलते हैं परम धाम की ओर, शांति धाम की ओर, परमात्मा के उस दिव्य धाम की ओर, और वहां जाकर के उसके सानिध्य में बैठ जाए और सर्व शक्तियों की किरणों को अपने अंदर महसूस करे। मांगना नहीं है, लेकिन वो किरणों को स्वयं में समाना है। ठीक है, तो चले घूमने है नहीं, हा? चले। अच्छा, तो स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो एकदम, आंखों को खुला रखें, सामने परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है उस पर एकाग्र करेंगे और स्वयं को इस देह के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मनिश्चय करेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाकी सभी बातों से समेट लेते हैं, अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज के रूप में ये शरीर मेरा मंदिर है, इस मंदिर में विराजमान मैं आत्मा चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी आत्मा धीरे धीरे स्वयं को इस देह से भिन्न महसूस कर और धीरे धीरे चलते हैं कि यात्रा पर अनंत की ओर पंच तत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारागण से भी बाहर एक दिव्य धाम में जहाँ चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है अंतर चक्षु से स्वयं को इस दिव्य लोक में देख रही हूँ जहाँ कोई बंधन नहीं है कोई बोझ नहीं है, स्वयं में एकदम हल्कापन महसूस कर रही हूँ। स्वतंत्र परम धाम में कोई कर्म का बंधन नहीं है, मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त अवस्था में कितना सुंदर और दिव्य स्वरूप है ये मेरा चारों ओर दिव्य प्रकाश की आभा फैली हुई है यहाँ मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में सतोगुणी स्वरूप में स्थित धीरे धीरे स्वयं को पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूँ जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज हूँ वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज पिता परमात्मा के सानिध्य में परम सुख का अनुभव कर रही हूँ सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जा रही। कितना सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज है, मैं आत्मा कुछ क्षण के लिए परमात्म स्नेह में समाती जाती है। और उस सुख का अनुभव करती है। मैं और मेरे पिता और कोई नहीं, समा जाओ, खो जाओ। मैं आत्मा, कितनी न सौभाग्यशाली हूँ जो परमात्म स्नेह ने, परमात्म प्यार की पात्र आत्मा बन गई। उस परमात्म प्यार को स्वयं में समाते हुए धीरे धीरे मैं आत्मा इस साकार दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति के मध्य में स्थित होती है। सर्व कर्मेंद्रिय पर अपना अधिकार प्राप्त करती है और ये परमात्म स्नेह को अनेक आत्माओं के साथ बांटना है। ओम शांति।